हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग ने कृषा को बता दिया था कि उसने उसे पनिशमेंट के तौर पर मुंबई भेजना तय किया है। कृषा को युग का फैसला पसंद नहीं आया, ना ही वो युग को छोड़कर मुंबई जाना चाहती थी। पर दूसरा सच ये भी था कि युग के फैसले के आगे कृषा कुछ कह नहीं सकती थी। काफी देर तक युग के सामने रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी जब युग का दिल नहीं पसीजा तो मजबूरन कृषा को उसकी बात पर हामी भरनी पड़ी। कुछ ही देर में वो मुंबई के लिए निकलने वाले थे। उसने युग की बात तो मान ली थी, लेकिन वो अब अकेले बाथरूम में बैठी थी। कृषा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो चुपचाप एक दिशा में देख रही थी, जबकि युग रूम के बाहर बैठा था। युग ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, आई होप तुम समझ सको कि मैं तुम्हें खुद से दूर क्यों भेज रहा हूँ। समझो और मेरे पास वापस आओ। पता नहीं क्यों मेरी वाइफ को प्रिंसेस की तरह पाला गया है और मुझे उसे क्वीन बनाना है, ताकि वो खुद को हर खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। भले ही कृषा को अभी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन युग ने ये फैसला उसे स्ट्रांग बनाने के लिए ही लिया था। अंदर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। युग बेड से उठा और बाथरूम का डोर खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए तुरंत खुल गया। युग ने देखा कृषा वहाँ ज़मीन पर बैठी हुई थी और सामने की तरफ देख रही थी। युग कृषा के पास गया और उसके पास बैठते हुए बोला, अब क्या बचा हुआ टाइम यही बाथरूम में ही बिताने का इरादा है? मैं हो जाऊंगी तैयार। कौन सा मुझे एयरपोर्ट जाना है? इस घर से टेक ऑफ करके दूसरे घर ही तो पहुंचना है। कृषा ने युग की तरफ देखकर जवाब दिया। रोने की वजह से उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थी। युग ने कृषा की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मैं नहीं चाहता कि वहां जाने के बाद तुम ये सोचो कि ये आखिरी टाइम भी मैं तुम्हारे साथ ठीक से नहीं बिता पाया। कृषा ने ना में सिर हिला दिया। फिर कुछ पल रुककर उसने युग से पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? युग ने कृषा की बात का जवाब देने के बजाय उसे खींचकर गले लगा लिया। युग ने कृषा को काफी कस के हक कर रखा था। युग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस एक ऐसा ही हग, कुछ देर ऐसे ही मेरे करीब रहो। युग की आंखें बंद थीं और वो कृषा को महसूस कर रहा था। न जाने कब उसे फिर से कृषा के इस तरह करीब आने का मौका मिलेगा। ये सोचकर युग एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहता था। युग, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, कृषा ने सुबकते हुए कहा। कृषा ने अपनी तरफ से एक आखिरी कोशिश कर रही थी ताकि युग मान जाए। युग ने कृषा को वैसे ही गले लगाए हुए कहा, कुछ भी ऐसा मत बोलो कृष जो मैं ना कर पाऊँ। और ये सजा कब तक भुगतनी होगी? कृषा ने पूछा। मुझे नहीं पता और ना ही कुछ पूछो, युग खोए हुए अंदाज में बोला। उसकी बातों से कृषा समझ गई थी कि युग के फैसले को बदलना इतना आसान नहीं है। अचानक कृषा को कुछ सूझा और वो युग से अलग हुई। कृषा सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर, आई वॉन्ट यू राइट अवे। कृषा की बात सुनकर युग ने आंखें बरी करके उसकी तरफ देखा। कृषा कन्फ्यूजन से उसे देख रही थी, तभी युग ने कहा, कहा था ना कृष, कुछ भी ऐसा मत मांगना जिससे तुम्हें या मुझे दोनों में से किसी को भी तकलीफ हो। तुम खुद भी अच्छे से जानती हो कि इस वक्त तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और तुम्हारी इस कंडीशन में मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। एक छोटा सा हग ही तो डिमांड किया था, लेकिन तुम्हें सब कुछ चाहिए होता है। युग ने सिर हिलाया और फिर कृषा को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया। युग ने कृषा को बेड पर बिठा दिया था। वो उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कृषा कोई अजनबी हो। इससे कृषा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपने पास रहने नहीं दे रहे हो? थोड़ा टाइम मिला है उसमें करीब नहीं आना चाहते? तो फिर आखिर करना क्या चाहते हो? जो मैं चाहता हूँ वो तुम कभी नहीं कर पाओगी। फिर भी सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो। तुम माफिया प्रिंसेस हो, फिर पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हें प्रिंसेस की तरह पाला है। आई स्वेयर मैंने तुमसे ज्यादा नाजुक लड़की नहीं देखी अपनी लाइफ में। युग बोल रहा था तभी कृषा गुस्से में खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई नाजुक नहीं हूँ। तुम्हें किसने बोला कि मुझे प्रिंसेस की तरह पाला गया है? मुझसे पूछो, मुझे जो चाहिए होता था वो बहुत रिक्वेस्ट करने पर मिलता था, और काफी बार तो भैया लाकर भी नहीं देते थे। प्रिंसेस की तरह पालने का मतलब ये नहीं होता कि जो डिमांड करो वो लाकर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी तुमसे पानी का एक ग्लास भी मंगवाया होगा। अब तुम्हारी हालत ऐसी होनी है कि थोड़ा टाइटली पकड़ो तो निशान बन जाते हैं। युग ने कृषा को सब समझाया और बोलते हुए कृषा का हाथ उठाकर उसे दिखाया। कुछ देर पहले युग ने कृषा को टाइटली हक किया था, तब उसकी बांह को कस के पड़ा था और वहां पर युग की उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। कृषा ने महसूस किया कि युग अब उस गुस्से में बात नहीं कर रहा। कृषा ने खुद को फिर से मजबूत किया और युग के करीब आ गई। उसने अपने दोनों हाथ युग के गले में डालते हुए कहा, आई लव यू सो मच युग, कहकर कृषा ने अपने होंठ युग के होंठों पर रख दिए। वो उसे काफी डीपली किस कर रही थी। युग भी उसका पूरा साथ दे रहा था। बीच में किस ब्रेक करते हुए कृषा ने अपना नाक युग के नाक पर रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी सोचा है मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मेरे पास वहां करने को कुछ नहीं होगा, ना मेरा कोई अपना होगा, तो मेरा मन कैसे लगेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, युग ने जवाब दिया। फिर भी वहां तुम तो नहीं रहोगे ना युग, तुम्हारे बिना सब अधूरा है, कृषा ने धीरे से कहा। युग कृषा को खुद से दूर भेजने पर अड़ा था, तो कृषा भी अपनी जिद पक्की थी। उसने इस बीच एक बार भी नहीं कहा कि वो युग की बात मानकर ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है। युग ने कुछ नहीं कहा और कृषा से अलग हो गया। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा और कृषा से कहा, आधे घंटे बचे हैं कृष, तैयार हो जाओ। कृषा ने युग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद पर बहुत बेबसी महसूस होती थी जब भी युग उसकी बात नहीं सुनता था। कृषा वहीं पर बैठ गई और फिर से बच्चों की तरह रोने लगी। युग अब उसे समझाकर थक गया था, इसलिए उसने कृषा को वही वैसे ही हाल में छोड़ा और रूम से बाहर निकल गया। कृषा ने रोते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते युग, ये सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारे साथ रहने की जिद करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे अलग होना है तो यही सही, पर ज्यादा दिन तक तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। तुमने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, तो दूसरे पड़ाव पर जाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। उस दिन मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तब देखती हूँ तुम क्या करते हो। कृषा अकेली बैठकर काफी देर तक रोती रहेगी। वहीं नीचे शब्द, सारा और हरलीन ने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो बस कृषा के आने का ही इंतजार कर रहे थे। जाने से पहले सारा ने युग के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर कोई भाव नहीं था। सारा ने युग के पास आकर धीरे से कहा, क्या तुम सच में ये डिसीजन लेना चाहते हो? कृषा एक बार किसी से अटैच हो जाती है तो वो सामने वाले से दूर नहीं रह पाती है। दूसरी बात, जानते हो ना, उसका गुस्सा आसानी से शांत नहीं होता है। मुझे उसे कैसे संभालना है ये मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, युग ने सारा को जवाब दिया। फिर उसने हरलीन की तरफ देखा और बोला, मैंने राणा मेंशन के सिक्योरिटी मैनेजर से बात कर ली है, मुझे वहां की 24 घंटे की फुटेज एक्सेस करनी है और उसने उसका इंतजाम कर दिया है।
हद है, जब तुम उससे अलग नहीं रह सकते, 24 घंटे उसे ही देखना है, तो फिर दूर क्यों भेज रहे हो? शब्द ने सिर हिलाकर कहा, ये तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, इसे समझने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, युग ने सार्कास्टिक वे में जवाब दिया। इससे पहले कि युग और शब्द की बहस और बढ़ती, हरलीन ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से लड़ना बंद नहीं कर सकते क्या? इतने बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। युग, कृषा कहाँ है? हमें निकलना है। युग को हरलीन की बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला, उससे पहले ही कृषा वहाँ आ गई। उसने ड्रेस चेंज नहीं किया था, ऊपर से उसके बाल भी हल्के बिखरे हुए थे, आंखें रोने की वजह से बहुत लाल हो गई थी और चेहरा भी उतरा हुआ था। हरलीन को कृषा की हालत देखकर दया आ रही थी, तो वहीं शब्द को युग पर गुस्सा। हरलीन युग को कुछ कहती, उससे पहले युग ने तेज आवाज में कहा, आई थिंक अब आपको चलना चाहिए, ऑलरेडी काफी देर हो गई है। कृषा, तुम चाहो तो युग से बात, हरलीन कृषा की तरफ देखकर बोल रही थी, तभी कृषा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, शायद हमें देर हो रही है बुआ, कहकर कृषा ने उनमें से किसी का भी इंतजार नहीं किया और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए। कृषा का बर्ताव देखकर वो सब समझ गए कि वो युग से बहुत ज्यादा नाराज है। वहीं युग के फेस पर कृषा की नाराजगी देखकर स्माइल थी। इसे समझना सच में नामुमकिन है, शब्द ने युग की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा। कुछ भी देर में वो चारों चौपर के अंदर थे और उनकी मुंबई की उड़ान शुरू होने वाली थी। कृषा अंदर जाते ही प्राइवेट रूम में चली गई, जबकि शब्द, सारा और हरलीन कॉमन रूम में थे। प्लेन टेक ऑफ करने के बाद भी युग कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा। उसके पीछे सिक्योरिटी मैनेजर की असिस्टेंट जेनी और मलिक दोनों थे। सर, हमें अंदर चलना चाहिए, मलिक ने युग के पास आकर कहा, तो युग का ध्यान टूटा। उसके बाद दोनों अंदर चले गए। उन्हें देखकर जेनी ने हैरानी से कहा, अजीब बात है, मैंने बॉस को इतना लॉस्ट कभी नहीं देखा। अपनी वाइफ को खुद से दूर कर दिया, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है, कहकर जेनी वापस अपने ऑफिस में चली गई। जब तक चॉपर मुंबई लैंड नहीं हुआ, कृषा ने बाहर कदम भी नहीं रखा था। लगभग 11 घंटे का लंबा सफ़र तय करने के बाद रात के लगभग 10 बजे के करीब उनका चॉपर राणा मैंशन में लैंड हुआ। जैसे ही चॉपर राणा मैंशन में लैंड हुआ, युग ने अपना आईपैड ऑन किया। उसने राणा मैंशन की फुटेज ऑन कर रखी थी। घर पहुंचते ही वो चारों अंदर पहुंचे। उन सबके आने की बात घर में सबको पता थी, लेकिन मान्या राणा के अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था। कृषा को उन सबके साथ देखा तो मान्या ने कृषा को देखकर मुस्कुराकर कहा, दया आ रही है मुझे तुम्हारी हालत देखकर। शादी को एक महीना भी नहीं हुआ और उसने तुम्हारा ये हाल कर दिया। कहा था उसका मन भर जाता है, लो देख लो, भर गया तुमसे मन और छोड़ दिया तुम्हें अकेले। मान्या राणा कृषा पर अफसोस जता रही थी। युग ने किसी भी तरीके से कृषा का फेवर लेने से मना किया हुआ था तो हरलीन ने कुछ नहीं कहा, जबकि सारा को मान्या की शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा था। उसने हमेशा से ही कृषा को प्रोटेक्ट किया था तो वो अब पीछे कहाँ हटने वाली थी। टाणाणा, आज मान्या की हड्डियाँ टूटने वाली हैं। खैर छोड़िए, क्या लगता है युग रह पाएगा अपने कृष के बिना? वैसे ड्रामा तो बहुत होने वाला है, देखते हैं युग का दिल पिघलता है या नहीं।